surgió Me.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए दक्षिण पश्चिम मॉनसून के बारे में मौसम विभाग के दीर्घकालिक पूर्वानुमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और पत्रकार सागर कुलकर्णी।
इस बार गर्मी बहुत जल्दी दस्तक दे रही है, लेकिन इस साल बारिश भी जमकर होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने जारी की जानकारी के मुताबिक इस साल मॉनसून की बारिश के अनुमान सामान्य से बेहतर है। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं डॉक्टर आनंद शर्मा से, जो कि इंडियन मीटरोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी है। स्वागत है डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आज ही भारतीय मौसम विभाग ने एक अनुमान जारी किया है साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में, जो सामान्य से 105% अधिक होगा, तो इस बारे में आप हमें जरा बताएं।
जी बिल्कुल, देखिए जब हम कहते हैं 105% ज्यादा होगा, इसका मतलब है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामान्य से अधिक वर्षा। और ये 105% किसका है? ये 105% है लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी कि मॉनसून की यदि हम लंबी अवधि के आंकड़े देखें 1971 से लेकर 2020 तक, यानी करीब करीब 51 साल का डेटा देखें, तो ये एवरेज आता है 87 सेंटीमीटर, यानी कि 87 सेंटीमीटर का 105% वर्षा मिलने वाली है। सामान्य तो 87 मिलती है, इसका मतलब 87 से ज्यादा मिलने वाली है आपको। मगर इसमें एक चीज और ध्यान रखना है हमें कि जोगी करीब बैठेगी 104 के आसपास। इसके साथ साथ मॉडल का प्लस माइनस 5% एरर भी होता है, यानी कि यदि माइनस हुआ तो 101% हो जाएगी, 5% माइनस हुआ, और यदि 5% एक्सेस में गया प्लस हुआ तो 110% भी हो सकती है। ये बात की जाए तो हमें इस बार अबव नॉर्मल जो मॉनसून है वो मिलने वाला है, और उसकी यदि हम क्लाइमेटोलॉजिकल प्रोबेबिलिटी भी देखें तो वो करीब करीब 33% है, मगर जो हमारे मॉडल की से जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है वो है 59%। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए कि 59% प्रोबेबिलिटी है अबव नॉर्मल मॉनसून की, यानी कि 105% इस बार मिल सकती है, तो अच्छी खबर है।
तो आइए हम अभी सुनते हैं IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने इस बारे में हमें क्या बताया।
पूरी देश में 2025 के दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक की ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक, यानी 104% से लॉन्ग टर्म एवरेज का होने का संभावना है। मात्रात्मक रूप से देश में ऋतुनिष्ठ वर्षा लॉन्ग पीरियड एवरेज का 105% होने का संभावना है, जिसमें मॉडल का त्रुटि है प्लस माइनस 5%।
तो डॉक्टर शर्मा, महापात्रा जी भी यही कह रहे थे और ये जानकारी भी इन्होंने दी थी कि इस बार एल नीनो की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, तो एल नीनो का क्या प्रभाव होता है मॉनसून की वर्षा पे, और उसकी ना होने की जो खबर है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा?
देखिए एल नीनो का ये माना जाता है, कई बार ऐसा होता है कि एल नीनो जो कंडीशंस होती हैं, यानी कि उस समय वार्म ओशन कंडीशंस होती हैं, मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मॉनसून पे, यदि मॉनसून सामान्य से कम हो जाता है। मगर 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, कई साल ऐसे भी हुए जिनमें एल नीनो था और मॉनसून खराब था, और कई साल ऐसे भी रहे कि एल नीनो था फिर भी मॉनसून अच्छा रहा। कुल मिला के ये माना जाता है कि यदि एल नीनो है तो डर बना रहता है कि मॉनसून खराब होगा, मगर इस बार बड़ी अच्छी खबर है कि एल नीनो जो है वो न्यूट्रल है। और उसके साथ साथ एक और है बड़ी अच्छी, इंडियन ओशन डाइपोल वो भी न्यूट्रल कंडीशंस में है, तो ये दो कंडीशंस तो हमें न्यूट्रल मिली हैं, तो उसको ये संकेत इनको पॉजिटिव मान के चल रहे हैं।
और एक और बात है कि जो स्नो कवर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे कि हिमालयन रीजन में हो, यूरेशिया में हो, तो वो भी अगर कम है इस बार तो उसका भी मॉनसून पे प्रभाव पड़ता है?
हाँ बिल्कुल, स्नो कवर जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और यूरेशिया जो रीजन है, इसमें यदि स्नोफॉल मान लीजिए ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जितना मॉइस्चर था पहले एटमॉस्फेयर में प्रेसिपिटेट कर गया, तो फिर कुछ बचेगा नहीं आपके पास। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार हम देखें तो जनवरी फरवरी मार्च वगैरह में जो सीजन रहा सामान्य से कम बर्फबारी मिली पूरे हिमालय के ऊपर भी और यूरेशिया में अंदर। तो जब जब ये देखा गया है कि हिमालय और पूरे यूरेशिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी फरवरी मार्च में स्नोफॉल, यानी जो हमारा हिमपात होता है, यदि वो कम होता है सामान्य से, तो उस साल मॉनसून अच्छी होती है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो बिल्कुल सही बात है, स्नो कवर इस बार कम मिला है हमको, तो इस बार एक अच्छा इंडिकेशन मिल गया कि मॉनसून अच्छा होने जा रहा है।
इस बार गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही है और हीट वेव डेज भी काफी ज्यादा मात्रा में होने की संभावना है, पर ये हीट वेव और गर्मी जो है उसका और मॉनसून का क्या रिलेशन होता है?
एक सिंपल रीजन तो ये रहता है कि देखिए जून जुलाई अगस्त सितंबर में मॉनसून होता है, उससे पहले मार्च अप्रैल मई जो होता है गर्मी के महीने होते हैं, और गर्मी के महीने में जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे पूरे सदर्न इंडिया से शुरू होती है गर्मी और नॉर्थ की ओर बढ़ती जाती है ये, और बाद में क्या होता है कि ये जो एक इतनी गर्मी पड़ती है ये जो अपना राजस्थान और पाकिस्तान के रीजन के आसपास, वहां पे हीट लो बन जाता है। हीट लो का मतलब ये है कि लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है ज्यादा हीटिंग के कारण, और उसका प्रेशर जितना कम होता है वो मॉनसून के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस रीजन के ऊपर राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास ये कम हीट लो बना रहता है, और जो समुद्र के ऊपर हाई प्रेशर होता है जो कि इक्वेटर के दूसरी साइड है, तो समुद्र से जो क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, यानी कि सी सरफेस प्रेशर ज्यादा है और लैंड के ऊपर पाकिस्तान राजस्थान के ऊपर प्रेशर कम है, लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड्स आती हैं, समुद्र से आती है, इक्वेटर को पार करती है और मॉइस्चर लेके आती है, और वही मॉनसून को हमारे को आगे बढ़ाता है। तो एक भी एक बड़ी अच्छी कंडीशन होती है हमारे लिए। तो ठीक है, गर्मी तो अच्छी पड़ रही है, मगर वही मैं एक चीज और ऐड करूंगा आपको, यदि हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ऑलमोस्ट जो हमारे 3 महीने गर्मी के होते हैं उसमें 1.5 महीने से ज्यादा समय निकल गया है और हार्डली इक्का दुक्का आपकी हीट वेव आई, बहुत प्लेजेंट मौसम चल रहा है कंपैरेटिवली दिल्ली एनसीआर में एटलीस्ट।
जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये अच्छे मॉनसून का जो अनुमान आया है कृषि के संबंध में आप कैसे देखते हैं?
देखिए दो चीजें, एक तो पहले मोटा मोटी पकड़ लें कि इसका स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें रेन की, तो ये कहा गया कि पूरे देश में ज्यादातर हिस्सों में ये जो रेनफॉल हो गया सामान्य से ज्यादा होगा, बट हाँ थोड़ी सी कुछ पॉकेट है लद्दाख, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी जो भारत है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और बिहार का कुछ पोर्शन, वहां पे वर्षा कम होगी। अब दूसरी बात है ये ध्यान रखें, जब हम मानसून की वर्षा की बात करते हैं 105% अभी जो हमने बोला, ये टोटल रेनफॉल बोला है हमने 4 महीने की रेन, अब उसमें 4 महीने में टोटल रेनफॉल की बात हो रही है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपकी रेनफॉल टोटल तो बिल्कुल सामान्य है, यानी कि आपको शुरू में महीने के अच्छी बारिश मिल गई, आखिर में अच्छी बारिश मिल गई और बीच में 3 हफ्ते में बारिश नहीं मिली। और कृषि के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, टोटल रेनफॉल तो इम्पोर्टेंट है पर टोटल रेन से भी यदि थोड़ी सी कम मिल जाए मगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए रेन का, यानी कि हर हफ्ते यदि थोड़ी थोड़ी वर्षा मिलती रहे तो वो फसल की ज्यादा अच्छी है, ना कि एक ऐसी वर्षा मिले कि शुरू में भारी वर्षा हो गई, एक आखिर में भारी वर्षा हो गई, बीच में वर्षा ही नहीं हुई, तो उससे क्या होगा, नुकसान भी हो जाता है और ज्यादा वर्षा जब पड़ती है वो बह के निकल जाती है और नुकसान करके जाती है, फायदा नहीं होता है। मगर जब नॉर्मल लेते हैं तो वो नॉर्मल निकलती है या नॉर्मल से ज्यादा निकलती है। तो इसलिए एग्रीकल्चर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और वो उसको प्रेडिक्ट करना कि हर महीने रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहेगा इस समय पे नहीं कहा जाएगा। अब जब ये मई का एंड आएगा तो ये जून के महीने की बताएंगे कि पूरे जून में कैसी वर्षा होगी और अलग अलग भागों में कैसी होगी, तब बताया जाएगा। तो ये ध्यान रख लें कि टोटल रेनफॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृषि के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कि पूरे 4 महीने हैं उसमें हर महीने में सामान्य मिलनी चाहिए पहले तो, और हर महीने में भी हर हफ्ते में समय समय पर वर्षा मिले, वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहता है तो फिर वो फसल के लिए बहुत अच्छा होता है।
जी, आपने भी अभी जिक्र किया कि तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट में इस बार कम वर्षा का अनुमान है और कुछ बिहार के हिस्सों में भी, तो ये कैसा आप ट्रेंड देख रहे हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में भी हमने देखा है पिछले लगभग एक दशक से वर्षा कम हो रही है, तो ये क्या क्लाइमेट चेंज की ओर दर्शाता है?
अभी कहना मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा, जंप करना होगा, क्योंकि कई बार साइक्लिकल पैटर्न भी होते हैं, कुछ साल होता है कि आपका फिर उसके बाद फिर वर्षा वैसे ही लौट के आ जाती है, तो इसलिए मैं तो इसको बड़ा कहूंगा अभी क्लाइमेट चेंज को नहीं इंडिकेट करूंगा, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बोलूंगा जो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो है। पर एक और ध्यान रख लें कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ रीजन ऐसे हैं जहां की वर्षा बहुत हाई है, जैसे शिलोंग वगैरह के आसपास के एरिया को देखें और आपके मौसिनराम देखें और ये जो एरिया वो वर्षा इतनी है, यदि थोड़ी कम भी हो जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि ये ध्यान रख लें ज्यादातर फसलें हमारी हैं उनको मॉनसून सीजन में, यदि हम राइस को भी मान लें तो उसको 60 सेंटीमीटर चाहिए सिर्फ वर्षा, और यहाँ की रेनफॉल तो 400, 500, 1000 सेंटीमीटर वाली वर्षा है, तो थोड़ी कम भी मिल गई तो फसल को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये ध्यान रख लें। हाँ, जो डैम में इकट्ठा करते हैं वो थोड़ा इशू हो सकता है, अदरवाइज एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं होता। हाँ, सिर्फ एक ही चीज है कि लॉन्ग ड्राई स्पेल नहीं होना चाहिए कि 3-4 हफ्ते बारिश ही नहीं, वो अक्सर ऐसा नॉर्थ ईस्ट में होता नहीं है कभी भी, क्योंकि हाई रेनफॉल रीजन है, सामान्य से कम हो सकती है, मगर सामान्य से कम होने के बावजूद भी कृषि को कोई वो ज्यादा प्रभावित नहीं करता है अनलेस अनटिल लॉन्ग ड्राई स्पेल हो।
एक और भी ट्रेंड हमने देखा है कि राजस्थान में वर्षा ज्यादा हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं?
कुछ सालों में आप कभी कभी देखते हैं कि मॉनसून सीजन में और इवन साइक्लोन आ जाए, जब खासकर जब अरबियन सी में साइक्लोन आता है वो तो मॉनसून के बाद की बात है, क्योंकि साइक्लोन जो आते हैं प्री मॉनसून में आते हैं, पोस्ट मॉनसून में आते हैं, और यदि पोस्ट मॉनसून में कई बार देखा है हमने कि साइक्लोन आया गुजरात से वो तो आगे को बढ़ा और बढ़ता हुआ राजस्थान को आया, राजस्थान में भी झमाझम बारिश है। अच्छा, वो तो अलग बात, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ मॉनसून सीजन की। इस समय मॉनसून सीजन में अक्सर क्या होता है कि आप देखिए लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होते हैं, कम दबाव के क्षेत्र बनते हैं बंगाल की खाड़ी के अंदर, और वो बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव के क्षेत्र बनते हैं, लो प्रेशर एरिया जिन्हें कहते हैं, उसकी मूवमेंट दो डायरेक्शन में होती है। एक वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करते हैं, सीधा सीधा वेस्ट की ओर जाते हैं, यानी कि उड़ीसा होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात राजस्थान की साइड की ओर जाते हैं। और एक होता है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, यानी बंगाल बिहार यूपी होते हुए इधर हमारे इस साइड को बढ़ते हैं आगे। तो जिन सालों में ये जो कम दबाव के क्षेत्र वेस्टर्ली मूवमेंट होता है उनका, वेस्ट की ओर सीधा जाते हैं, मतलब कि मध्य प्रदेश होते हैं और गुजरात राजस्थान को, उस सालों में झमाझम बारिश होती है राजस्थान के अंदर। तो कुछ सालों में ये पैटर्न दिखता है, पहले काफी हुआ करता था, फिर बीच में नहीं हुआ, अभी काफी साल से फिर ये पैटर्न दिखने लगा है कि वेस्टर्ली मूवमेंट हो रही है लो प्रेशर सिस्टम की। और जब जब लो प्रेशर सिस्टम की वेस्टर्ली मूवमेंट होगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुजरात राजस्थान और वेस्टर्न एमपी वगैरह में झमाझम बारिश होती है।
डॉक्टर शर्मा, पिछले कुछ सालों में ये फोरकास्ट की क्वालिटी काफी इम्प्रूव हुई है, तो ये कैसे हुआ और इसे बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं?
हमें जो भारत सरकार की तरफ से फंडिंग मिली, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से जो फंडिंग आई, उसके चलते तरह तरह के इम्प्रूवमेंट हुए, रडार लगाए गए, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए, ऑब्जर्वेटरी का नेटवर्क बढ़ाया गया, अपर एयर ऑब्जर्वेटरीज का नेटवर्क बढ़ाया गया, सेटेलाइट में नए नए सेंसर लगाए गए, इसरो से बोला गया कि हमें ये चीजें चाहिए, उन सेंसर से हमें नया नया डेटा मिला और मॉडल, हालांकि हमारे अपने मॉडल्स नहीं, हम यूएस या यूके मॉडल्स हैं जो उनके अलग अलग मॉडल्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं और वो तो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं वो सब मॉडल हैं। और फिर मल्टी मॉडल एंसेंबल आ गए हैं, मॉनसून मिशन के तहत में कहते हैं स्पेशल मॉडल्स बनाए गए हैं। तो ये सारे जो मॉडल में निरंतर, जैसे जैसे आपने देखा होगा कि पहले हम लोग सोचते थे कि हमें सिर्फ एटमॉस्फेयर के आंकड़े चाहिए यदि हमें मौसम का पूर्वानुमान लगाना है, हमें पता चला नहीं ऐसा नहीं है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर यानी ओशन आपस में कनेक्टेड है, ओशन का डेटा भी चाहिए, वो भी डाला गया मॉडल में, तो फोरकास्ट इंप्रूव हो गई। फिर कहा नहीं 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 एक स्फीयर और भी है, लिथोस्फीयर, सॉइल कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है मॉइस्चर, उसको भी डाल दिया और इंप्रूवमेंट हो गया। फिर उसने कहा नहीं नहीं और इंप्रूवमेंट चाहिए, कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा बायोस्फीयर, जो पेड़ पौधे उनसे पानी जो एवापोरेट हो रहा है, ट्रांसपरेशन हो रहा है, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है मॉइस्चर को और बारिश को और मानसून को, वो भी डाला, उससे और इंप्रूवमेंट हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं एक स्फीयर और रह गया, क्या है वो, क्रायोस्फीयर, यानी कि आर्कटिक अंटार्कटिक और हिमालय जो स्नो पड़ी है वो कैसे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रही है, वो कैसे रेडिएशन बजटिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको भी डाला तो और इंप्रूवमेंट हो रहा। तो जैसे जैसे हमारी नेचर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, क्योंकि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इमिटेट नेचर, नेचर में किस तरह से मूवमेंट हो रही है सारी, मॉइस्चर की, विंड्स की, टेम्परेचर कैसे वेरिएशन हो रहा है, प्रेशर कैसे वेरिएशन हो रहा है, उस सबको स्टडी कर रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ा रहे हैं और उस अंडरस्टैंडिंग को मॉडल में पैरामीटराइज कर दे रहे हैं। तो नेचुरली धुरंधर साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में लगे हुए हैं, निरंतर अच्छे अच्छे मॉडल डेवलप कर रहे हैं, वो उन मॉडल्स को हम लेते हैं, उनको टेस्ट करते हैं और उनको देखते हैं कौन सा पैरामीटर वो ओवर प्रेडिक्ट कर रहा है या अंडर प्रेडिक्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करते हैं, फिर उसमें अपनी एक्सपीरियंस डालते हैं जो हमारा क्लाइमेटोलॉजिकल एक्सपीरियंस है और एक रीजन में काम करने का है, माउंटेन्स कैसे बिहेव करती है, उन सारी चीजों का हम ऐड करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं मशीन फोरकास्ट में और वो बन जाता है मैन मशीन मिक्स। तो ये प्रयास निरंतर है और आगे भी प्रयास होते रहेंगे, अभी भी बहुत स्कोप है, क्योंकि ये ध्यान रख लीजिए 100% तो प्रेडिक्शन करना बहुत ही कठिन कार्य है, मगर हाँ यदि हम 85-90% भी करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी और वो धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले सालों में ये और अच्छा होगा।
धन्यवाद डॉक्टर शर्मा।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे दक्षिण पश्चिम मॉनसून के बारे में मौसम विभाग के दीर्घकालिक पूर्वानुमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और पत्रकार सागर कुलकर्णी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में